अनुभव इसलिए मिलना चाहिए।
यदि कोई काय मन और वचन से शरणागत भगवान का न हो और भगवान गुरु के चरणों में तन मन वचन से शरणागत न हो उसको यह न बताए इसका ये साथ। यदि कोई तन मन वचन से समस्त इंद्रियों से गुरु के चरणों में शरणागत हो, कैसे शरणागत हो, शरणागत हो करके वो श्लोक जो पहले बतलाया गया है प्रणिपाती क्या तदविधि प्रणिपाती न परिप्रश्न न सेवया, ये तीन चीजों के द्वारा गुरु जी की सेवा कर रहा हो। यदि सेवा कर रहा हो तब तो वो समझेंगे जिस चीज को लेना चाहता है और जो, और यदि वो प्रणिपात प्रश्न परिप्रश्न परिप्रश्न मैंने क्या प्रश्न सीधा महाराज जी का क्या उत्तर होगा, मत दो उत्तर होगा मत दो उत्तर परिप्रश्न परिपात पूर्वक, और जो श्रवण किया है फिर तब प्रश्न करेगा, तब श्रवण किया ही नहीं और प्रश्न करने लगा तो वो प्रश्न करना नहीं जाने लगा, तो उसके ऊपर छापर की बातें बतला दो बस, ये सर्वगुण ये मत बतलाओ, इस पर शपथ किया है कृष्ण ने, जो तपस्या के द्वारा अपना अंतःकरण सिद्ध नहीं कर सका है, शरणागत नहीं है, गुरु वैष्णव की सेवा न किया हुआ हो तो गीता का ज्ञान मत देना। प्रचार का ये मतलब नहीं है जहाँ तहाँ रात के ऊपर मैं घी झाल दूँ, ये प्रचार का मतलब नहीं है, जहाँ तहाँ जैसे तैसे सब बोल दिया, अधिकारी व्यक्ति अधिकारी देख करके उसके अनुरूप बतलाए, अभी तक अभी को ये सब चीज़ें नहीं बतलाई थी, अभी तक बतलाया जी हमारे लिए यज्ञ करो जज्ञा साधु कर्म, ये बतलाया था ब्रह्म ज्ञान बतलाया, परमात्मा ज्ञान उन्हें बतलाया, अंगुष्ठ परिमाण भगवान ने चित्त लगाने के लिए कहा, ये बतलाया योगी नाम सर्वेशा मदगते अंतरात्मना सत्थामान जो सामान बस यही सब बतलाया, कर्म योग से भी श्रेष्ठ है योग, ज्ञान योग से भी ये श्रेष्ठ है, तप योग से भी ये श्रेष्ठ है, और समस्त योगों में जो लोग अंतर मन से हमारे प्रति शरणागत होकर के हमारी सेवा करते हैं क्या योगी नाम सर्वेशा मदगतेन अंतरात्मना, अंतर आत्मा को हमसे योग युक्त करते हैं, श्रद्धा पूर्वक भजन करते हैं मेरा अनन्य भाव से, समस्त योगियों से वो लोग श्रेष्ठ हैं, किंतु अपना स्वरूप यहाँ पर बतलाया नहीं भगवान के प्रति परमात्मा के प्रति पर, किंतु इसी श्लोक में जो बतला रहे हैं मन मना भाव, मन मना भाव मने कौन मन मना, मम मने कौन, कृष्ण कह रहे हैं कृष्ण बतला है, श्याम सुंदर बंशीधारी जिनकी बड़ी सुंदर सुंदर अलके हैं, सिर पर मोर मुकुट विराजमान, अधर पल्लों पर बंसी रख करके अपने हृदय का सारा अमृत उस बंसी के छिद्र से निकाल रहे हैं और फिर ही त्रिभंग रूप से खड़े हैं कदम वृक्ष के नीचे वृंदावन में, ऐसे कृष्ण को के प्रति मन मना पाओ कहा, इसके पहले मनमना शब्द का प्रयोग बहुत कम किया है, इसलिए हमने कृष्ण के रूप में ही गोपी का उदाहरण देकर के मैंने मनमना भाव का तात्पर्य समझाया, मनमना भाव और मधुभक्तों के संबंध में श्रवण की तरह स्मरण वंदन इत्यादि का उदाहरण देकर के भक्तों का कुछ कुछ चरित्र मैंने बतलाया कि कैसे उनका भक्त हुआ जाता है, इसके लिए कल हमने कुछ थोड़ा सा आभास किया, आवाज दिया किंतु और भी बहुत भक्तों का चरित्र ऐसा है जो जो भगवान को पाए हैं उन लोगों ने जो साधन किया है गोस्वामी ग्रंथों में ये दृष्टि को चलता है। इसलिए मनमना भाव तो भाव अवस्था में कुछ हो सकता है, किंतु प्रेम अवस्था नहीं वो ठीक ठीक मनमना भाव हुआ जा सकता है। भावावस्था साधन में ये बहुत कम। मदभक्त तो ये प्रारंभ से श्रद्धा से लेकर निष्ठा रुचि आसक्ति भाव यहाँ तक इसका अधिकार है। मदभक्त तो अब इसमें किंतु भाव की प्रबलता है, कुछ गंभीर श्रद्धा होनी चाहिए, इसी का नाम सेवा भी। भक्त माने क्या?
भलधातु
सेवायाम, ये भक्ति है जिसमें सेवा हो। यहाँ पर तीसरा उन्होंने बतलाया मद याजी भव, याजी याजी माने यजन, यजन यज्ञ, यजन यज्ञ से होता है। यज्ञ में प्रीति न भी रहे थोड़ी सी श्रद्धा भी रहे तो यज्ञ हो सकता है। यज्ञ तो ऊपरी उपचार है। ठाकुर जी का यह अर्चन भी दो प्रकार का होता है, एक सेवा वो भक्ति में चला गया मतलब भक्तों को, और जहाँ अर्चन है ये यजन में आ गया। आ रहा है समझ में? कुछ हमारे महाप्रभु जी और राय रामानंद के बीच में जो वार्तालाप हुआ है उसमें इस पर कुछ बतलाया गया है। 16 उपचार से कोई मेरा पूजन करता है, कैसे 16 उपचार? आसन आवाहन आसन पाद्य अर्थ आचमन स्नान फिर आचमन
वस्त्र
आभरण तिलक इत्यादि, और इसके बाद में भोज्य भोग नैवेद्य आचमन तांबूल और फिर पुष्पांजलि। ये सब चीजें अर्चन की 16 उपचार है, 12 उपचार से और 5 उपचार से भी ये हो सकता है। किंतु यदि उसमें प्रेम नहीं है तो भगवान नहीं दिखेंगे। भूख और प्यास होने पर पानी और भोजन का रसास्वादन होता है, जितना भी टेस्ट को सुस्वादु भोजन क्यों न हो, भूख न रहे किसी को दिया जाएगा, किस चीज की तरकारी बनी है, सब्जी क्या क्या बनाया है टेस्ट करेगा। नमक थोड़ा सा कम मालूम होता है, नमक कुछ बेसी हो गया, जरा ये पतली खीर हो गई, ये रोटी थोड़ी सी टेढ़ी है, ये बराबर नहीं गोल नहीं हुई, अरे तुम्हें गोलाई की जरूरत है न किस चीज की जरूरत है, ये रसगुल्ला तो ठीक है किंतु चपटा है। ये सब विचार उस समय होगा जब भूख नहीं रहेगा तो क्या करें। हमारे बामन महाराज जी ने एक दिन में 5 निमंत्रण हुआ अभी प्रचारों में, बताते थे मैं क्या करता हूँ, सबका मन रखना है तो मैं बैठ करके इस तरकारी को वहाँ खा देता हूँ, उस सब्जी को यहाँ और उसको यहाँ वहाँ से उसको और थोड़ा सा उसको ऐसे करके जो जिस रूप में था थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर देता और थोड़ा सा ऐसे कर करके और पानी पी करके थोड़ा समय लगा कर फिर दूसरे घर में जाता तो वहाँ पर पूजा तैयार है। ऐसा कर भूख नहीं है, यदि भूख रहती क्या चीज है ये तो विचार नहीं, रूखा सूखा रोटी जैसे की हो, यदि बासी अन्न है तो उसमें पानी दे करके नमक डाल करके थोड़ा सा नींबू निचोड़ करके और पुलाव है जिसको कहते हैं पुलाव, बहुत सुंदर उसको बड़ा खाता। तो ये भूख रहने पर उसकी मर्यादा और तेज उसमें लगता है, भूख है ही नहीं। यदि साधक में प्रेम नहीं है और वो अर्चन करता है तो भगवान इससे प्रसन्न नहीं है। और यदि साधक को प्रेम की भूख है तो वो सरसोपचार का एक उपचार से केवल पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त उपहितम स्नामी जो प्रयत्न करके भगवान को प्रेम से श्रद्धा से जो कुछ पत्रम पत्र को खाने की चीज नहीं है किंतु तुलसी का पत्ता भी यदि एक दे दिया है। पुष्पम पुष्प भी खाने की चीज नहीं है तो कृष्ण यदि आएंगे तो गले में उसका फूल की माला दे दूंगा
गला जो ना
और यदि नहीं आएगा तो उस फूल को लेकर के पकौड़ी बना करके खा लेंगे। बख फूल एक ऐसा है बहुत कोमल होता है तो उसको बना लेंगे खा लेंगे तो वो यदि वो भी कोई दे दे यहाँ तक कि कोमल जो पत्ते हैं उनको भी भगवान को मिलता है तो उसको प्रेम से दिए जाने पर भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। और यदि भक्तों में प्रेम की भूख होनी चाहिए प्रेम ये किसमें होगा देने वाले किसमें यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। क्या समझना है यदि हमको भूख है तो कोई भी चीज़ सबको भी दे दिया जाए कोई भी चीज़ नमक है कि नहीं ये भी नहीं देकर के पेट भर खा लेगा और उसका रसास्वादन होगा मुझे मेरे अंदर में भूख है ना किसी दिन यहाँ पर भक्त को प्रेम की भूख हो तो भगवान को प्रसन्नता होती है ये क्यों हमें प्रसन्नता होनी चाहिए ना। जयात्मा सुप्रसिद्धि जिसका अर्थ मत लगाना जयात्मा सुप्रसिद्धि थी ये मुझे प्रसन्नता होती है ये भोग काम हो जाएगा समझ रहा है वो अर्थ है नहीं भागवत का जयात्मा
परो धर्म जतभक्त
यहाँ पर आत्मा का अर्थ मैं मत लगा लेना भगवान के लिए तो कर रहा है ना सवई पुंसान परो धर्मो जतो भक्ति अधोक्षत के प्रति वो भक्ति हो रही है तो अधोक्षत को भी प्रसन्न होना चाहिए ना। तो यदि अधोक्षत का साथ भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए तो हमारी पूजा सफल और मुझे प्रसन्नता हुई तो क्या समझो ये तो भोग और काम हो गया। किंतु एक बात है यदि भगवान को प्रसन्नता हो जाती है तो जीव अपने आप तस्मिन तुष्टि
जगत
जगत तुष्टि हो जाता है। और यदि अपने प्रसन्नता के लिए भगवान की पूजा करते हो तो ये सकाम भक्ति हो जाएगी ये अति प्रश्न समझ लेना अपने प्रसन्न होने की कोई भावना ना रहे अन्य तो केवल अर्चन हो जाएगा। जो लोग अर्चन करते हैं गृहस्थी में अधिकांश लोग अर्चन करके कहते हैं कि प्रभो हमारे समस्त कर्मों का फल आपके चरणों में अर्पण करें इसलिए इसलिए कि हम और हमारे परिवार के लोग सुखी और शांत करते हैं ऐसा अर्चन नहीं होना चाहिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर श्रीमद् भागवत से अर्चन का एक उदाहरण दे करके आप लोगों को समझा महाराज प्रसिद्ध तो लिखा ना
पृथ्वी पूजने
पृथ्वी पूजने पूजने मैंने यहाँ पर जजने जजन मैंने पूजन अर्चन कैसे होता है इसको जरा पढ़े तो तुम लोग बहुत बार बार होंगे हम भी बहुत बार पढ़े थे किंतु ध्यान से लेते इसलिए इसमें जो आंतरिक अभ्यंतरिक जो शिक्षाएं हैं हम लोग उसको नहीं बोल पाते। देखो इसमें कितना सुंदर है टीकाओं के द्वारा सुंदर बेन अधार्मिक नास्तिक व्यक्ति ऋषियों ने सामूहिक रूप से उस पर आक्रमण किया और मुहू शब्द के द्वारा वो मर गए अपने पापों से ही मरा भगवान इत्यादि कुछ नहीं मानता सब प्रजाओं में त्राही त्राही मचने लगते ये कोई राजा नहीं है डकैतों का उत्पात होने लगा और तरह तरह के अत्याचार अनाचार होने लगे। लोगों ने निवेदन किया ऋषियों से ये जब पृथ्वी की रक्षा कैसे प्रजाओं उन्होंने कहा अच्छा ठीक उसके पैर को जंघा को चीर कर और मक्खन किया जैसे दही मती जाती लकड़ी से तो उसमें पाप को पैदा फिर उसके हाथ को यहाँ से कचरा मक्खन किया तो ये ऐसा करने से उनमें से प्रथम हरा देता है। प्रथम माने क्या, उसका अर्थ क्या है, जो अपने सद्गुणों से समस्त विश्व को रक्षा पालन पोषण करेंगे उनका नाम है पृथ्वी। पृथ्वी भर में अपने यश का प्रमथन करेंगे, प्रमथन से और उसे विश्व में उनकी कृति छा जाएगी और उसे प्रजाओं का सब पालन पोषण होगा। तो अकेले नहीं निकले, एक पेयर निकला, एक जोड़ी निकली, पुरुष और कृष्ण। पुरुष का नाम हुआ पृथ्वी। पृथ्वी को घर में अपने गुणों से चारों तरफ यश का विस्तार करेंगे, प्रजाओं का रक्षण करेंगे, इसलिए पृथ्वी। और उनके साथ में जो स्त्री हुई वो लक्ष्मी जी की अवतार, और ये थे भगवान के अवतार, परमात्मा के अवतार। और ये हुई लक्ष्मी जी की अवतार, इनका नाम हुआ अर्ची। जो कार्य करती है उसका नाम है अर्चना। वो क्या करती है लक्ष्मी जी, क्या करती है, प्रभु की सेवा करती है। तो ये जो पृथ्वी महाराज के प्रति, भगवान के प्रति जो कुछ कार्य करती है इसका नाम है अर्चा। अर्चा क्या हो गया, अर्चना। और अर्चना का तात्पर्य है सेवा, सेवन, विशेष करके पूजन। पृथ्वी पूजन ये इन्होंने क्या किया, पृथ्वी को दोहन किया, बछड़ा बनाया बांधु मनु को, और स्वयं दोहन श्रद्धा का पात्र लेकर के उसमें दोहन किया पृथ्वी को। जो पृथ्वी असुरों के अत्याचार से, बेन इत्यादि के अत्याचार से समस्त अन्न को, दुग्ध को अपने अंदर में छिपा दिया था, अब वो दे नहीं रही थी, असत पुरुष पैदा हो गए। अब ये आए प्रजा त्राही त्राही कर रही थी, अन्न इत्यादि बहुत दुर्भक्षी हो गई थी, इसलिए पृथ्वी को ऊपर में बाण उठा करके मारना के लिए संधान किया। तू हरी हरी घास खाती है, तू तरह तरह के अन्न तुमको खिलाते हैं सब, और तू दूध को चुराती है और अन्नों को देती नहीं है, प्रजाओं का पास पालन पोषण नहीं करती है, तेरा हम बदल। वो डरती हुई गाय का रूप धारण करके उद्देश्य काम से नहीं, बोलिए ऐसा मत कीजिए, मैं आपके शरणागत हूँ, गाय का वध नहीं होना चाहिए, आप मुझे गाय को वध कर रहे हैं और उसमें भी मैं शरणागत आपके हूँ, आप तो भगवान के अवतार, मैं आपके लिए रक्षणीय और पालनीय, ऐसा कीजिए योग्य पात्र लाइए, बछड़ा लाइए जिसको देखने से मैं पिन्हा जाऊँ, पिन्हाना इसके मकान में दिखा जाना आपने, आप ऐसे नहीं होगा, दोहने वाला चाहिए, पात्र चाहिए और बछड़ा चाहिए, और मुझे दूध दीजिए। तब स्वामी मनु को बछड़ा बनाया, अपने श्रद्धा के पात्र में खुद उठा दी, और प्रजाओं को सुख शांति से सबको भी भाग करके पानी। इतना करने के बाद में अब उनका पूजन है, पृथ्वी पूजन है, श्रीमद् भागवत में श्लोक आए उन्होंने पूजन किया। 100 यज्ञ यजन मैंने यज्ञ करने के लिए संकल्प किया, आर्यावक्र का वो ब्रह्मवक्र आपकी सरस्वती और जमुना के बीच में, गंगा जमुना के बीच में यहाँ पर सरस्वती की भी धारा में, उस स्थान पर उन्होंने यज्ञ के लिए स्थान चयन किया। 99 यज्ञ हो रहे, 100 यज्ञ करेंगे। यज्ञ क्या, यज्ञार्थात कर्मणो लोकयमनस्त्र कर्म बंधर तदर्थम कर्म कुंते मुक्त संग समाज। यज्ञ किसको कहते हैं, भगवान के प्रीति के लिए जो कुछ भी आप करेंगे उसका नाम यज्ञ। यज्ञ में भी बहुत तारतम्य है, सभी यज्ञ बराबर नहीं। ये भी जो यज्ञ कर रहे हैं, पशु लाए गए और उसमें तरह तरह के पदार्थ हैं सब, उसके द्वारा भगवान श्रीहरि का पूजन होता है, किंतु यज्ञ में हिंसा भी होती है, तो जिस पशु को अंत में हवन किया जाएगा, यज्ञ पशु को वहां पर रखा गया था और इंद्र ने देखा कि ये यज्ञ पूरा हो जाएगा तो हमसे भी लोग उनका आदर करेंगे और हमारा आसन भी छीन लेंगे, इसलिए चोरी चमारी से यज्ञ पशु को लेकर के उड़ा दिया, लेकर के आकाश में जाने। ऋषियों ने कहा कि इंद्र लेकर के भगा जा रहा है, तो इनके लड़कों ने देखा जैसे वो जा रहा है भगा हुआ, साथ में यज्ञ पशु है। भृगु ऋषि इत्यादि ने कहा मारो उसे, तो बाण संधान करने जा रहे थे किंतु देखा जगह दूध खाली कौशे लाल वस्त्रधारी सिर में त्रिकुंड और भस्म इत्यादि लगाए। अरे ये तो साधु आदमी, इसको कमें कैसे मारो, मारो मारो, ये पाषंड वेश मारो, त्रिकुंड लगाए हुए है, ये संतों का चिन्ह है, त्रिकुंड लगा दिया एक दिन दिया और जटाजुट खूब लगा दिया। रावण सीताहरण के लिए जा रहा था तो कैसा बना ऐसा ही वेश, लाल कपड़े पहने नहीं, हाथ में दंड ले लिया और चुरा करके जा रहा था, मैंने पाषंडी वेश बना था। इसलिए पाषंडी वेश वालों को वैसा वेश देकर के मत करी जाओ जो ये भक्त हैं। उस समय इंद्र ने 10-15 बार उसको चुराया और 10-12 बार जो जो वेश धारण किए ये सब पाषंडी वेश, जबकि ये बाण चलाए तो उस यज्ञ पशु को और ये वेश दोनों को छोड़ करके वो खा गए। कुछ लोग जो थे उन जो वेश छोड़ गए थे उसको ग्रहण करते हैं, तो वो लोग पाषंडी। फिर यज्ञ आरम्भ किया, फिर आए हाथ में नर मुंडले का सुखा क्या करते हैं खोपड़ी खोपड़ी सूखी हुई खोपड़ी आप ऐसे किए हुए पराफायन कर और उसमें लाल रंग रख दिया और वेश बनाया, त्रिशूल ले लिया और ऊपर से नीचे एकदम कपड़ा लाल और त्रिशूल हाथ बड़ा फैल कर मोटी मोटी रुद्राक्ष की मालाएं तो बड़ी खाओ जिससे शरीर छिल जाएगा। अरे देखो इंद्र लेकर के जा रहा है, फिर बाण संधान, फिर उस वेश को छोड़ करके और बस उसको छोड़ करके था, उसको भी कुछ लोगों ने जो वेश छोड़ा हुआ था उसको ग्रहण कर लिया, वो नर कपाली हुए कपाली, आजकल जरा कम देखते हैं पहले ये सब कपाली। इसी तरह से जितने वेश चोरी करते समय उन्होंने धारण किया वो सब पाषंड वेश। इसके बाद में देखा जी लड़कों के द्वारा ये नहीं मरता, बस प्रचंड क्रोध करके हाथ में धनुष लिया और बैठे बैठे इंद्र को देख करके छोड़ दिया। यजमानों ने कहा अपने ऋषिकों ने महाराज आप क्रोध मत कीजिए, आप शांत होकर के बैठे, हम लोग उसको यहीं पर बुला लेते हैं और आग में हवन करते हैं, बस वो शांत होकर के बैठे और उन ऋषिकों ने ऐसा हमसे जब किया ऐसा करके आवाहन किया और इंद्र वहां से सिंहासन उनका स्थिर था, तो स्थिर सिंहासन समेत उनको खाए। इंद्र घबरा और थोड़ी देर तक स्वर्ग से बाहर इतने हुए थे, इतने में पितामह जी को स्मरण किया, पितामह ब्रह्मा जी अरे बेटा ऐसा मत करो, अरे इंद्र जैसा भी है प्रभु का अंश है, प्रभु की बहुत सेवा करता है, उसके आग में हवन मत करो, उन्हें छोड़ दो, तुम्हारा उद्देश्य सफल हो जाएगा, तुम्हारे वश से हो जाएगा। अरे तुम तो सात्विक पुरुष हो, तुमको क्या जरूरत है कि तुमको नष्ट कर, शरीर आत्मा नहीं, आत्मा शरीर से पृथक है, जो लोग शरीर में आत्मबुद्धि रखते हैं वो पाषंडी ही है, तुम तो ऐसा नहीं है,
तो तुम ऐसे सुखों के लिए क्या हरि की आराधना करता है? छोड़ो 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 ये सब।
उनके कहने से उन्होंने छोड़ दिया, कहा जब तुम्हारा यज्ञ पूरा हो जाएगा तो फिर आरम्भ करो। यह आरम्भ किया थे भगवान विष्णु, आंखों में शंख चक्र गदा पत्नी दिए थे और इंद्र को अपने बगल में लेते हुए वहां उस यज्ञ में उपस्थित। प्रभु जी ने कहा तुम्हारा यज्ञ छोड़, इंद्र को क्षमा कर दो, इंद्र हमारा ही अंश, इसके माध्यम से हम जगत का रक्षण और पालन पोषण करते हैं, इस पर तुम द्वेष मत रखो। तुमने जो इसमें हमारा पूजन किया, क्या पूजन किया? 1650 से उनका पूजन किया और यज्ञों में अपने भोग की लालसा से करते हैं, जैसे सागर महाराज इत्यादि ने किया, किंतु पृथ्वी महाराज जी का हरि का पूजन था, इसलिए इसमें शरीर और आत्मा में भेद दिखलाते हुए आत्मज्ञान से युक्त होकर के उन्होंने हरि की आराधना की, उसमें एक पूजन का उपयोग। तो एक पूजन करने से ही उसी पूजा यज्ञ का मुख्य था वो पूजन, इस यजन का उद्देश्य, इसलिए भगवान इससे प्रसन्न। यद्यपि यह मुख्य चीज नहीं है, सेवा नहीं थी, तभी ये प्रसन्न। ये जगत व्यापार के लिए, जगत की रक्षा करने के लिए यज्ञ किया था और भगवान प्रसन्न हो इसके लिए, इसलिए मुख्य तो ये नहीं है। जैसे गोपियों का मुख्य है, भक्तों का मुख्य होता है, तभी भगवान प्रसन्न होकर के और उन्हें करते हैं। इस तरह से पृथ्वी पूजा न पृथ्वी पूजा के और कैसे आचार्य देवी जिस प्रकार से उनकी पूजा करती है, ये इसीलिए उसका नाम पाचन हो गया। अर्चन से हम लोग अर्चन करें तो केवल ये जो कुछ तुलसी इत्यादि देते हैं, सोच उपचार करते हैं, अपना एक ड्यूटी कर्तव्य कर लेते हैं। मान लें कि सारा जीवन भर जिनकी हम पूजा की या 20 वर्षों तक जिनकी हम पूजा की प्राण के समान समझ कर, और मान लें कि हमसे और पुजारी से किसी बात के लिए थोड़ी सी खटक बटक हो गई, तो हम उस पूजा को छोड़ करके हम चले जाएंगे कि नहीं, तो वो पूजा कैसी पूजा रही? जिसको इतना सजाया, लाड पार किया और सब कुछ किया, अब भाई हमसे वो झगड़ा करते हैं, हमसे ये पूजन पूजन नहीं करते, तो अब आप शुद्ध व्यक्ति हैं। आप लोग विचार कीजिए जो पूजन किस लिए था, इस पूजन में हमको किसी चीज की अपेक्षा नहीं, अपने प्राणों के प्राण से आसक्ति से हम पूजा कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, लड़ाई होगा तो हम ठाकुर जी को लेकर के चले जाएंगे। मीराबाई जैसे घर छोड़ी तो क्या किया, ठाकुर जी को छोड़ दिया, मेरे सर गोपाल ले लिया तोले में, कभी आंखों में बैठाती है, कभी सिर पर रखती है और आंसुओं से उनका पूजन करके विश्वास। इसलिए पूजन वैसा ये तो शास्त्रीय ऊपर हम लेते हैं, थोड़ा सा लौकिक की तरफ हम लेते हैं। मथुरा की बात, हमसे कोई एक महिला ही या कोई कह रही थी, यही अपने अनुभव की बातें कह रही थी, मैंने सत्य बात, और प्रकृति भी ऐसी होती है ये बात की। एक आदमी शालग्राम शिला का पूजन करता था, उसे कोई जानता फंता नहीं था, साधारण रूप में उसका नियम था कि 4 बजे भोर में वो जरूर जमुना स्नान करने के लिए जाएगा और स्नान करके जमुना का जल कलश में भरकर ले आएगा और रख करके फिर अपना तिलक आंधी में सब कर करके बस ठाकुर जी का पूजन करेगा, उसी जमुना जल से ही करेगा, दूसरा कोई जल नहीं। और ठाकुर जी का भी व्रत सबसे बड़ा पूजन करके जैसा अर्चन करना चाहिए वो अर्चन बड़ी श्रद्धा के साथ। कुछ दिनों के बाद में होते होते 10-15 वर्ष ऐसा किया, एक दिन घना घोर अंधकार अमावस्या की रात और मार्च का महीना, हवा सनसनाती हुई चल रही थी,
तुम्हारे जैसा वर्षा नहीं हो रही थी, वर्षा हो गई थी, अभी वर्षा बंद नहीं हुई, रात भर रंग वर्षा है। अभी भी जमुना में कुछ बाढ़ है, रास्ते में जमुना में जाते हैं ना, विश्राम घाट जाना है आपको, और बाढ़ थोड़ी सी आ जाए पानी, तो वो पानी कहाँ तक आ जाता है, दुकानों से टकराता है, दुकानों में भी भर जाता है। विशेष करके स्वामी घाट का रास्ता है, वहाँ पर तो मानो प्रचंड धारा चलती है, तो मानो वो उधरी से आ रहा है विश्राम घाट पर स्नान करने के लिए। तो इसी स्थिति में छुछुरता हुआ किसी प्रकार से, उस समय वर्षा थम गई 3 बजे के करीब, वो समझा जी 4 बज गए। पहले तो खड़ी खड़ी नहीं देखते थे हम लोग भी अपने जीवन में, रात में उठते थे ध्रुव तारा से हम लोग अनुमान लगाते थे ये रात कितनी दिन, और शुक्र तारा ये उत्तर, शुक्र तारा जब उत्तर में आ जाएगा और उसकी स्थिति से हम लोग जानते थे ये कितनी रात दिख गई है कितनी, तो उस समय बादलों की वजह से वो तारा उतार, इसलिए उनको भ्रम हो गया पहले ही चल दिए घोर अंधकार। स्नान करने के बाद में तो वर्षा होने लगी और ऐसा अंधकार हो गया कि कुछ सूझे नहीं किधर जाना है किधर नहीं जाना है। देखा जब अब आ रहा है तो ऐसे चले क्या करें, देखा जो एक छोटा सा लड़का, लौंडा कहते हैं लौंडा, छोटा सा बच्चा हाथ में लालटेन लिए हुए बोरा उड़े लिए, बोरा को डबल करके ऐसे सिर में लगा देते हैं कछली काछ, लालटेन लिए आ रहा और इनको तो रास्ता सूझ नहीं रहा था, तो वो चलने लगा। तो लड़के ने बड़े मीठे आवाज से पूछा, बाबा कहाँ जाए वो, किधर जाए वो? तो उसने कहा जिधर उनको जाना था ना, जिधर इनको जाना था। तो इन्होंने बतलाया कि हमको यहाँ मार्शा चलोगे रास्ता हम दिखा, हमको तो इसी गली में जाना है, उसे एकदम गली का नाम बतला दिया। चौबच्चा 9 गजा या क्या क्या नाम है गजा पैसा है, किसी गली का नाम बतला दिया, पर इसी छोटा सा लड़का जानता विश्वास हो गया, बस साथ में आगे आगे बच्चा पीछे पीछे, कोई शब्द नहीं कुछ नहीं। सोचेंगे ये रात में लड़का कैसे आया और भी लालटेन के साथ में, इसको क्या जरूरत पड़ी, छुट छुटता हुआ बोरा चल तो दिए। चलने के बाद में बाबा अपने गली में आ गया ना, हमको सीधा चलना है, तुम घर में अपने गली में चले जाओ, ये तुम्हारा घर है ना। तो ठीक, जब वो इधर मुड़े और मुड़ करके फिर बच्चे की तरफ में देखा, कुछ संदेश उसके तरफ में देखा, तो न हरिकन है न बच्चा है, बस हाथ मलते रह गए। ये ठाकुर जी हमारा नियम रक्षा करने के लिए इस प्रकार देश में हरिकन लेकर के रास्ता दिखा करते हैं, ये है अर्चन पूजा, जिसके अंदर में अपनी निष्ठा ठीक रख करके भगवान का ठीक ठीक पूजन करना है, अपने सुख दुख का ख्याल नहीं उस पूजन के लिए। तो इसको कहते हैं भूख, इस भूख के साथ में, इस प्रेम के साथ में यदि कोई भगवान का जजन करे तो क्यों नहीं लेंगे। इसलिए प्रजतात्मन प्रयत्न करता हुआ सत्ता तो वह प्रेम से जो हमारा अत्यंत पूजन करता है, ऐसे नहीं गुरु से, गुरु की सेवा कर रहे हैं, गुरु जी से कुछ बात बतंगड़ बन गई और गुरु जी ने डांट दिया थोड़ा सा, पहले तो बहुत स्नेह किया था, तो बहुत उत्साह हमारी भक्ति थी ना, अब कुछ घंटा हो रही है हो गए, बस गुरु जी ने कुछ कह दिया तो गुरु जी ने से कुछ कहा नहीं, उन्होंने कहा कि गुरु जी ये रही, ये है तुम और ये रही तुम्हारी सेवा जय सिया राम। बस ऐसा नहीं, परीक्षा खत्म होती है जबकि कठिनाइयों में भी उनकी सेवा, और ऐसे सेवकों को प्रभु भी जन जन्मांतर में नहीं छोड़ते हैं, वो गुरु भी नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह से अभी एक और मुझे स्मरण हुआ है पूजन का, अभी भूल गया, अभी हृदय में कौंधी थी वो, फिर अभी भूल गया, बातें भूल जाती हैं। तो पूजन जैसा भी हो, इस उदाहरण के द्वारा ये पूजन ऐसा है। परिक्रमा भी पूजन करता है, समझ लीजिए है, तो भी ये सब चीजें श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि के बाद में अर्चन में ही ये सब ऐसे ही। हाँ अभी याद है, आप लोग सुने हुए हैं, बहुत बारिश को सुने, कोई ब्राह्मण ठाकुर जी की सेवा पूजा करता था और सेवा पूजा करने के बाद में भोग लगाता था, उसको कुछ महीना मिलता था राजकीय कोष से या कहीं से, कोई उसको महीना देता था, वो कृतक पूजक था। कृतक पूजक माने क्या, कुछ पैसा लेकर के वो पूजन करता, तो पैसा लेकर के जो पूजन करेगा तो पैसा और ठाकुर जी में दोनों में उसकी पूर्ति किसमें अधिक रहेगी, स्वाभाविक। पैसा नहीं देगा पूजा हम नहीं करेंगे, पैसा देंगे पूजा करेंगे। देहातों में बंगाल में ऐसा नियम है, 10 घर में पूजन करना होता है, कह देगा जैसे देखो पकी पकाई हुई चीज भोग में मत लाना, हम नहीं लगाएंगे, कच्ची चीजें चावल है, सब्जी है, फल है, ऐसी चीजें तुम लोग रख सकते, वही चीज। तो वो जाएगा जब ठाकुर जी को दिखलाएगा कच्ची चीज चावल टावल 10 घरों से चावल, फूल पूजा ये सब ले करके कपड़े टपड़े अपने गमछे में एक तरफ में बांधता चलाया जाएगा और एक घर से दूसरे घर तीसरे घर 10 घर में पूजा करके अंत में देखेगा जे कितना माल हुआ अपने घर में लौट। ठाकुर जी को पूजा से कोई एक पैर जाएगा भीतर में, दूसरा बाहर ही रहेगा, ठाकुर जी को निवेदन कर देगा, इसको भीतर पूजा कहते हैं, ये पूजक नहीं है। तो कोई ऐसा ही था कहीं से उसको पैसा मिलता था और पूजा करता था, उसको कहीं बाहर जाना था। उसने अपने लड़के को बड़े प्यार से कहा, बेटा ब्राह्मण का बेटा है, मैंने तुमको सिखाया तो नहीं अर्चन, फिर भी तुम ठाकुर जी का पूजन पूजन स्नान करा करके उनको भोग लगा दो, जैसा करते वैसे कर दूंगा। बस उसकी मैया ने रोटी वोटी बनाई और सब्जी भी तैयार की, किसने ठाकुर जी कहा ठाकुर जी स्नान कर लीजिए, बर्तन में उनको रख दिया और गंगा जल इत्यादि से तुलसी के साथ में उनको कहा प्रभु जी स्नान कीजिए, बस बस स्नान करा करके धूप पुष करके कपड़े पहना करके उनको आसन पर बैठा दिया, सिंहासन पर। भोग लगाने की बारी आई, तुलसी उसमें छोड़ दिया, कहे ठाकुर जी अब आप प्रसाद भोग आरोपिए, मैं मंत्र वंत्र तो कुछ जानता नहीं हूँ, बस आप प्रसाद पाए, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, खड़ा हो। उसके पिताजी 3-4 मिनट में भोग लगाते थे, ये 10 मिनट 15 मिनट 8 घंटा तक खड़ा रहा, किंतु देखा जे थाली की तरफ में तो वो कुछ खाया नहीं प्रभु ने। अरे पिताजी भोग लगाते हैं तो आप बड़े चाव से खाते हैं और मैं भोग लगाया, मंत्र नहीं जानता इसलिए नहीं खाएंगे, हमारे पिताजी ने कहा है ये तुम भोग लगा देंगे, और पिताजी चले गए आप भूखे रह जाएंगे, मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं कुछ नहीं लूंगा जब तक कि आप नहीं खा लेंगे। सचमुच बड़े अंतर से उसने कहा, मंत्र का भाव यदि ऐसा ना रहे तो वो मंत्र काम नहीं करता, भाव के लिए मंत्र होता है जो भाव को जगाए, और जो भाव ही रूप करके सेवा करेगा ठाकुर जी कैसे नहीं। तो वो कहा कि प्रभु आप नहीं खाएंगे, मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा और अधिक देर लगाएंगे तो मैं इसको उठा करके रख दूंगा, मैं भी बिना खाए पिए सो जाऊंगा। कुछ देर के बाद में भगवान से राहत मिल गया, छठ सिंहासन से उतर आए और आसन पर बैठ करके दोनों हाथों से खाने खा लिया, एक ही रोटी शेष नहीं रखी, सब खा लिया, बड़ा प्रसन्न हुआ और थाली लेकर के घर पहुंचा। मैया मैया वो तो आज खा ही नहीं रहा है, खा बड़ी मुश्किल से बहुत कुछ उलाहना देने पर तभी उन्होंने खा लिया, तो खा लिया रोटी कहाँ गई, रोटियाँ कहाँ, तो उन्होंने खा लिया, खा लिया ये कैसे हो। दूसरे दिन ऐसे खिलाया, तीसरे दिन उसके पिताजी आ गए, मैया ने कहा ये तो हम लोग को 2 दिन से बिना खाए पिए सोना पड़ता है, क्यों ये कहता है जो ठाकुर जी खा लिए, ठाकुर जी खाते हैं थोड़े, कहता जी ठाकुर जी खा लिए। तो उसने कहा जी बेटा वो इधर उधर देखता था चूहे उन्हें ले जाते हैं, बड़े बड़े चूहे होते हैं, बम्बई में देखा इतना बड़ा चूहा वो पूरा एक साथ में पांच रोटी खा के ले जाएगा, ऐसे ऐसे बड़े बड़े चूहे। तो ऐसा कोई चूहा था तो घर में अधिक रहते हैं चूहे, पुराने ठाकुर जी के घर आसानी से आराम से उनको खाने पीने के लिए मिल जाता है, घी भी पीने के लिए मिल जाता है, इसलिए वहाँ पर ठाकुर जी के सिंहासन के नीचे ही अपना घर बना देते हैं। यदि उसका ठीक से संस्कार भी किया जाए तो वो पूरा का पूरा खा ले। तो ऐसे ही वो हुआ होगा। बेटा से पूछा जा रहा, बेटा तू खाली खाओ कैसे लाता है? तो प्रभु सब ले लेते हैं खाली। अच्छा तो ठीक है आज वो भी, और आज वो बगल में कहीं से छिप करके देख रहा था सचमुच में वो ठाकुर जी खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तो उसने कहा जो प्रभु अब फिर मत कीजिए, जल्दी से पढ़ा लिए और भोजन, बच्चे को उसके पिताजी ने नहीं बतलाया और बस आवाहन किया। अरे ठाकुर जी टस से मस नहीं हुए बहुत, अरे प्रभु आप उतरते नहीं आए, आप भोजन क्यों कर रहे हैं? आज लज्जा आ रही है, क्यों आपको क्या हो गया? धीरे धीरे आवाज आई, आज तुम्हारे बाप वहाँ से पिताजी देख रहा है, मैं मुझे देखते हुए मैं नहीं आ जाऊँगा। क्यों क्यों नहीं आई? तो उसको ऐसी भावना और श्रद्धा नहीं, आपको आना पड़ेगा, जैसा भी आप नहीं खाएंगे तो हमको बढ़ा दो, ठीक तुम अपने पिताजी को छू दो जरा। बस पिताजी को छुआ तो कहीं बस भाव देखा देखा तो चिंता कर जाओ खाए, प्रेम से वो भी खा गया। ये है पूजन का भाव। यदि पूजन में ऐसे भाव न हो, श्रद्धा न हो, तो पूजा का अधिकारी नहीं है। इसलिए कहते हैं वो क्या, पत्रम पुष्पम फलम कोयम जो मे भक्त्या अर्चन के समय भक्त्या क्षति प्रतिष्ठ रूप से देता है, मैंने भावपूर्वक देता है, ऐसे लोगों का मैं देता हूँ। अर्जुन ने कहा हाँ जरूर प्रभु आपको नमस्कार है, ये मुझसे इस युद्ध क्षेत्र में भला ऐसा अर्चन ये मेरे द्वारा, अब कोई और सस्ती उपाय बतलाइए जो इस युद्ध क्षेत्र में मेरे द्वारा संभव समझ गया समझने में है। अच्छा तो कृष्ण ने क्या कहा और भी सस्ता के लिए, नमस्कार माम हमें प्रणाम तो प्रणाम ही ऐसे नहीं कहा, नमः अहंकार निषेध पूर्वक सर्वधर्मानुपत्तये माम एकम शरणम व्रज, ऐसा करते हैं उसकी नमस्कार। एक बार नमस्कार करने वाला व्यक्ति कमर में अंगोछा माने साथी बांध कर जैसे नदी में छलांग देने के लिए ऊपर से कूदता है चलता है, ऐसे ही मानो भव सागर को पार करने के लिए एकदम तैयार हो सके
वर्षा को लेकर
और देखता है जब छलांग लगा दिया तो देखा जब भव सागर तो पीछे रह गया, मैं बहुत आगे पहुंच गया। एक बार ही कृष्ण प्रणामी
पुनर्भवाय,
एक बार यदि उनको प्रणाम कर लिया पुनर्भवाय, अब उसके लिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे गमनम, ये अपने माता के गर्भ में उसे और माता का स्तन पीने के लिए उसको ऐसा एक बार भी प्रणाम यदि प्रणाम होना चाहिए प्रणाम कैसे। अर्जुन ने कहा जी आपको एक नहीं सत्कार आपको, तो प्रणाम ही होना चाहिए ऐसा, ये तो एक अर्थ हुआ, एक एक का अलग अर्थ किया। और इसमें बताया ऊपर में प्रेमा भक्ति भाव भक्ति साधन भक्ति और ये नमस्कार भी साधन भक्ति के अंतर्गत, ये इसको इस प्रकार से अर्थ तो किया, अब इसको ऐसे कर लीजिए मद भक्तो है ना, मनमना भव मनमना भवा हो करके अपने चित्त को हमारे में लगा करके हमारा भजन करो और उसी भजन के अंत में हमारा यजन करते हुए प्रेम पूर्वक हमें नमस्कार करो, अंत में जैसे पूजन कर लेते हैं पंत में नमस्कार करते हैं ना, सष्टांग प्रणाम करते हैं ऐसे, तब एक हो गया ना, भाव पूर्वक बड़े प्रेम के साथ में भक्ति के अंगों का पालन करते हुए प्रभु को नमस्कार करो। ये सर्व गुह्यतम परम सूर्य वचन, ये गीता का सर्वश्रेष्ठ और परम उपदेश। यदि कोई ऐसा कर ले तो बस एक श्लोक से भव सागर को पार कर भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम उत्पन्न होगा। शुद्ध रूप में इसको प्रज भक्ति भी इससे लाभ हो जाएगी, किंतु इसका उदाहरण गीता में दिया भी है, तो शुद्ध रूप से ये बनना है। उसका उदाहरण समस्त श्रीमद् भागवत, इसलिए प्रारंभिक पुस्तक गीता, तो गीता का अवहेला अनादर नहीं होना चाहिए। उसको भित्ति बनाते हुए उसी के ऊपर में भक्ति का महत्व खड़ा करके हम उसी में राधा कृष्ण का भजन करके अपने भाव से भाव सागर, ये गीता का सार उपदेश है। आज अब हम जब प्रवचन करेंगे, हम लोगों का वो छूट गया है बहुत देर से, और बहुत ही अच्छा प्रसंग है, भक्ति का प्रसंग और अनन्य भाव से वो ब्रज का भाव आएगा। पहले दिन में संक्षेप में जो बताया है वो बतला देंगे, और इसके बाद फिर बड़े ध्यान और चाव से यदि कोई सुनेगा उसको अवश्यम एव लोभ उत्पन्न हो जाएगा, और इसी लोग से हम ब्रज की तरफ में, ब्रज प्रेम की तरफ में आगे बन जाते हैं।
Oh. ஜிபாத்
கௌன்
கௌர் பக்தி